संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के दानी हैं। अन्य कांक्षित अंग की चर्चा कर रहे थे, ये जो आठों अंगों की चर्चा है वो अत्यंत संक्षेप में है। गाथा तो एक एक ही है लेकिन उसमें सभी में लगभग एक 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 सी ही बात कही गई है, एक एक बात को बदलकर। और टीका में भी अमरचंदाचार्य ने बहुत कंजूसी से काम लिया है, एक ही पंक्ति को बार बार दोहराया है। जो शुरू की पंक्ति तो ये है कि भगवान आत्मा गायक भावमय होने से, संकोचकीर्ण गायक भावमय होने से ये, और अंतिम पंक्ति ये है कि उसे कांछा कृत बंद नहीं होता इसलिए निजरा होती है, उसे चिकित्सा कृत बंद नहीं होता इसलिए निजरा होती है, उसे मूल दृष्टिकृत बंद नहीं होता इसलिए निजरा होती है। ऐसे ऐसे ही उन्होंने हरेक में आदि पंक्ति और अंतिम पंक्ति तो एक सी दोहराई है, और बीच में जिस नए की चर्चा है उसका नाम ले दिया है। और निकांक्षित अंग में तो दो बातें कही हैं कि कर्मों के फलों के प्रति और वस्तु धर्मों के प्रति भी कोई वो कांक्षा नहीं रखते हैं। फिर आगे तो उन्होंने कर्म के फल तो छोड़ ही दिया और वस्तु धर्म शब्द का प्रयोग आगे बराबर तीन चार अंगों में किया है। देखो अभी अपने पढ़ते हैं प्राकृत की चार गाथाएं एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि चार में का व्याख्यान एक साथ ही हो जाएगा, उसमें ज्यादा विस्तार का कहने को कुछ है नहीं। जो चत्तार विपाये छिन्दधिते कम बंध मोह करे, जो न करे दी कंखम।
सोणि कंखोचिदा सम्मादिठि मुणि दपो, जोण करे दुगुंछम चिदा सव्येसि मे वृधम माणम। सो खलुले पदिगिच्छो सम्मादिठि मुणि दपो, जो हवति असम्मूढो चिदा सिद्धिठि सव्यभावेषु। सो खलु अमूण दिठि सम्मादिठि मुणि दबो।
दो गाथाएं और पढ़ दो गाथाएं और पढ़ दो। जो सिद्ध भक्ति जुतो
उव गुण ओद सब धम्माणम, शुभ उव गुणकारी सम्मादिठि मुणि दबो। उम्मंगम गच्छन्तम सगम विमकेठ वेदि जो चेदा, सोणिति कर्णा जुत्तो सम्मादिठि मुणि दबो।
अब देखो इन सभी गाथाओं में सभ्य धम्मेशु ये जो पद है ये बार बार आया है। ये जो निकांक्षित अंग है उसमें तो ये कहा कि कर्म के फलों में और सब धर्मों में जो कांक्षा नहीं करता है वो निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निकांक्षित अंग की व्याख्या तो ये है, मैंने बताया था कि कांक्षा और इच्छा में क्या अंतर है। चारित्र मोह के उदय से जो इच्छा होती है वो है इच्छा, और श्रद्धा का जो विकृति है उसी को बोलते हैं कांक्षा। उसी इच्छा में जो एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है तो उसे बोलते हैं कांक्षा। क्योंकि सम्यक दृष्टि आठ अंगों की बात है इसलिए यहां इच्छा की बात न करके कांक्षा की बात की है। तो कर्म के फलों में कांक्षा नहीं करता, इसका सीधा सच्चा अर्थ यह है कि पुण्य के फल में मुझे एक चक्रवर्ती हो जाऊं, नारायण हो जाऊं, अथवा और भोग सामग्री मुझे प्राप्त हो जाए। आदमादित चक्रवर्ती और नारायण की कोई भावना नहीं करता हो तो आज लोक में जो अच्छे अच्छे पद हैं वो प्राप्त हो जाएं, अथवा और जो हमारे पंचेन्द्र के भोग संबंधी सुविधाएं हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं, ऐसी इच्छा करता है ना, लेकिन उसमें उनमें ही सुख है। ऐसी सुख बुद्धि पूर्वक, उनमें उपादे बुद्धि पूर्वक जो इच्छा होती है उसे कांक्षा करते हैं तो कहते हैं वो सब कर्मों के फलों में कांक्षा नहीं रखता। तारत्र मुहे के दोष से इच्छा तो होती है, देखो तो भरत चक्रवर्ती जैसे क्या है, उदाहरण देते हैं, किसी भी चक्रवर्ती के ले लो, भरत पहला है तो उसका नाम बार बार आ जाता है। छह खंड के लिए जीतने के लिए निकल गया तो बिना इच्छा के निकल गया होगा, 96,000 शादियां की तो बिना इच्छा के करनी होगी। अरे इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा थी, यहां तक कि अपने सगे भाइयों के जो 100-100 भाई थे उन सभी से कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो इच्छा के बिना ये सब कैसे संभव है, तीव्र इच्छा के बिना ऐसे कैसे संभव है। फिर भी आचार्य ये कहना चाहते हैं कि उनके इच्छा थी, कांक्षा नहीं थी। कांक्षा थी नहीं थी माने उनमें सुख बुद्धि नहीं थी, ख्याल में है ना। ये बहुत कई दफे मैं दोहरा चुका हूं इस बात को, और लेकिन जब जब बार बार आएगी तो वो बात कही जाएगी, कही जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ बार बार वहां से हट जाता है। तो इस तरह से कर्म के फलों में वांछा नहीं करता, ये तो बात ठीक होगी, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। लेकिन कर्म फलों के साथ में इनने सब्य धम्मेशु पद डाला है, तो सर्वधर्मों के प्रति का क्या अर्थ है। अमृतचंद्राचार्य ने तो इस सर्वधर्मों के प्रति ऐसा का अर्थ कर सर्व वस्तु धर्म कर दिया, टीका में सर्व वस्तु धर्मों के प्रति, बस इतना अर्थ किया। अब अपने लिए तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, चाहे सर्व धर्मों के प्रति कहो और चाहे वस्तु धर्मों के प्रति कहो, दोनों ही एक से ही अस्पष्ट लगते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो उन्होंने जो सर्व वस्तु धर्मों के प्रति बात की है तो आगे खुद कुंद ने ही गाथाओं में वस्तु धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया है, उनने वहां से ही लिया है। ये सब भावेशु आ गया, तो अमृतचंद्र ने तो इतना ही किया, फिर तो जयसेनाचार्य ने इसे खोल के किया कि वस्तु धर्म माने क्या। तो वस्तु देखो इसमें है, वो सब लिखा है वस्तु धर्म, उनने क्या क्या खोला, वस्तु धर्म का अर्थ उन्होंने क्या किया है, कौन सा पेज है भाई निकालो, 25 320 देखो, सबसे नीचे की दो पंक्तियां देखो, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में तात्पर्य वृत्ति के अभिप्राय को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है, शायद अपन ने ये पढ़ा था पहले है ना। सम्यक दृष्टि को सर्व कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती। अब सब धर्मों का सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि और निंदा प्रशंसा आदि वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की, अब बोलो अपन कहां कल्पना कर सकते हैं ये कि वस्तु का धर्म और सुवर्णत्व पाषाणत्व और निंदा और प्रशंसा। अब तात्पर्य वृत्ति में लिखा ये बात, क्योंकि उनको भी ख्याल में नहीं आई कि काय के प्रति ये कांक्षा नहीं करेंगे, क्या वस्तु धर्म की कांक्षा नहीं करना माने क्या, वस्तु का धर्म तो स्वभाव है ना, वस्तु का स्वभाव पहले का वो होता ही है, उसमें क्या कांक्षा करने और नहीं करने का अर्थ है ना। अब ये ही उनको हम आगे चलाना है, देखो दादा देखा, अब वो कहते हैं खुद ही, फिर अर्थात उद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है, क्योंकि ये सुवर्णत्व और पाषाणत्व ये भी पुद्गल है और निंदा और प्रशंसा के शब्द भी पुद्गल हैं, भाषा वर्णना के कार्य है ना। तो हमें गृहस्थ लोग सोने में और पाषाण में अंतर करते हैं, अथवा सोने को चाहते हैं और दूसरे वचनों में निंदा और प्रशंसा के वचनों में हमारा संबंध है। तो उन्होंने पुद्गल के वस्तु धर्म को अर्थ पुद्गल के भाव किया, कैसे क्या निकाला ये तो बे ही जाने। जो अपन को तो निकाल के उनके सामने रखा, ये तो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जय सेन के आधार पर लिखा है, अभी बताएंगे नीचे। पुद्गल स्वभावों की वांछा नहीं करता, उनके प्रति संभाव है, उनके उनसे राग द्वेष नहीं करते वो, अथवा अब देखो अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। अब देखो ये भी एक वस्तु धर्म के अर्थ अन्य मतियों के द्वारा माने गए धर्म, ये जो दो अर्थ निकाले हैं उसमें से सीधे कैसे निकले अपन नहीं कह सकते, है ना। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो निश्चित है यदि उन्हें बे नहीं लिखते तो अपन ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते थे, कोई भी नहीं निकाल सकता था। उन्होंने इसका क्या आधार बनाया, यही आधार बनाया कि ये छह द्रव्य हैं, तो चार द्रव्य तो एक तरह से अदृश्य हैं, आकाश है, काल है, धर्म और अधर्म है, इन्हें तो हमने आगम से पढ़ के ही जाना है, तो उनके प्रति कोई राग द्वेष होने की बात कभी किसी में देखी नहीं जाती है ना। उनके प्रति आकर्षण होने की बात देखी नहीं जाती कि मुझे मिल जाए, अरे मिलने को आकाश सबको ही मिला हुआ है, तो सदा मिला हुआ है मुफ्त में, है ना, और काल भी मिला हुआ है, धर्म अधर्म भी लोग आकाश में व्याप्त हैं, और आप चलोगे धर्म निर्भाव का निमित्त हो जाएगा, ठहरोगे तो अधर्म, उसके प्रति आपकी कोई आकांक्षा संभव नहीं है। और उन्होंने सब वस्तु धर्म अपने आत्मा से भिन्न तो लेना ही है, तो उन्होंने एक पुद्गल को ले लिया, इसमें अन्य जीव भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले पुद्गल को लिया। और पुद्गल में दो चीजें ली कि एक निंदा और प्रशंसा के वचन और दूसरी सुवर्णत्व पाषाणत्व, माने पुद्गल देव की जो पर्याय हमारी संपत्ति के रूप में मानी जाती हैं, विपत्ति के रूप, उनको उनने लिया। और फिर धर्म शब्द जो है ना, वो वस्तु धर्म जो अमर चंद्र ने कर दिया ना, तो उसको उन्होंने वस्तु धर्म को हटा दिया, धर्म ही कर दिया। तो लोक में जितने धर्म है ना, तो वो कहते हैं एकांतवादी धर्मों, उन्होंने ये अर्थ भी वहां से पकड़ लिया, धर्म शब्द से इस लोक में ये पकड़ लिया कि वस्तु धर्मों, धर्मों के प्रति, धर्मों के प्रति कहा था ना, तो धर्मों में तो धर्म द्रव्य ले सकते थे, लेकिन वो धर्मों बहुवचन है नहीं ना, एक ही है धर्म द्रव्य था, है ना, इस धर्म द्रव्य पे तो वो गए नहीं, और पुण्य पाप का फल वो कर्म में आ गया था, है? इसलिए उन्होंने यहां पर ले लिया। देखो इस प्रकार सम्य दृष्टि जीव वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता है। ये तो जो अंत में आई ना अमृत की पंक्ति वही है ना, वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने की उपचार की वांछा सम्य दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है। उपचार की इच्छा कर लो इसे, वो जो अपन ने वांछा कांक्षा, वो कांक्षा शब्द है तो वांछा भी चलेगा यहाँ, वांछा माने चारित्र मोह के उदय से होने वाली इच्छा, और कांक्षा माने श्रद्धा के दोष दर्शन मोहिनी के उदय से होने वाली एकत्व बुद्धि। किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, यही आ गया ना कर्तव्य, और कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। प्रश्न, तात्पर्य वृत्ति को आधार बनाकर यह कहकर आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें देखा ना शुरू शुरू में कि जयचंद जी छाबड़ा ने ये बातें तात्पर्य वृत्ति को आधार बनाकर कही हैं। पहले कई दफे कह चुका हूं, मैं एक दफे फिर दोहराता हूं कि जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ हैं वो लगभग सभी जो बात आत्मख्याति में नहीं आई और तात्पर्य वृत्ति में है वही बातें हैं। इसलिए जब अपन जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थों को पढ़ लो और चाहे जयसेन की टीका के आधार से वो बातें निकाल के इसमें रख दो, बात एक ही है, है ना। उक्त संदर्भ उत्तर तात्पर्य वृत्ति में धर्म शब्द का अर्थ वस्तु धर्म करते हुए भी क्यों लगा रहे। अमृतचंद ने वस्तु धर्म किया ना, फिर इनने भी वस्तु धर्म किया, पुण्य रूप धर्म और अन्य मतों द्वारा मान धर्म भी किया गया है। और पुण्य के फल तो कर्म फल में भी आ गया था, है ना। इसी को आधार बनाकर जयचंद जी छाबड़ा ने उक्त स्पष्टीकरण किया है। अब इस गाथा के संदर्भ में स्वामी जी जो कह रहे हैं इसे आप पढ़ लेना, बात वही है जो जयसेनाचार्य की उसमें आई है। अभी खाल के इसमें प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, पेज नंबर 321 पे। आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में तो निकांक्षित अंग का संदर्भ अन्य में संदर्भ में अन्य मतों की बात नहीं कही और पुण्य रूप धर्म की भी चर्चा नहीं की। अभी दो इनने जोड़ दिए इसमें, उनने तो अन्य वस्तु धर्मों के प्रति कहकर के छोड़ दिया उसको अस्पष्ट, और उन्होंने बस एक ही बात सिद्धांत की रखी कि आत्मा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी होने से और उसमें कांक्षा नहीं होती, इसलिए कांक्षाकृत बंद नहीं होता अपितु निर्जरा होती है। और ऐसे ही वो आगे लगाते जाएंगे इन पंक्तियों को बराबर, अंत तक प्रभावना अंग तक ले जाएंगे। अमृतचंद की ये विशेषता है कि जब वो एक सी बात होती है तो एक सी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आपने लोगों ने प्रशिक्षण किया होगा और आपको बताया गया होगा, मुझे पता नहीं, बहुत दिनों से मैंने क्लास ली नहीं है और सुनने को भी नहीं बैठ पाता हूं, इसलिए लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेकिन एक बात उसमें हम बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय जो परिभाषा बताओ उसमें बार बार शब्दों का फेरफार मत करो। उदाहरण के तौर पर छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और फिर आपके छह द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, बात तो एक ही है, चाहे समूह कह लो चाहे समुदाय कह लो, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, फिर वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि समूह छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं कि समुदाय को। तो आप समुदाय जो भी लिखा है उसमें समूह लिखा है समुदाय, उसी को बार बार रिपीट करो। जबकि जो कविता होती है ना उसमें कवि कहता है कि एक शब्द बार बार रिपीट नहीं करो, अनेक शब्दों का प्रयोग करो अलग अलग जगह, है ना। एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो दो अर्थ निकलते हों, तीन निकलते हों, चार निकलते हों, तो और ज्यादा मजा आ जाए। क्यों? काव्य में ये गुण माना जाता है और न्याय की भाषा में ये दोष माना जाता है कि जिसके दो अर्थ निकलते हों ऐसा वाक्य आप नहीं बोल सकते। और इसके लिए वो बार बार उसको कई तरीके से लिखते हैं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, कोई ऐसा ना समझ ले, है ना। जैसे अपने कहते हैं ना रो को मत जाने दो, तो वो कहेंगे किसी को रोकना नहीं है, जाने देना है, ऐसा आशय है, हैं? समझे ना, वो ऐसा खोलेंगे। कोई रो को मत जाने दो अर्थ न समझे, इसलिए वो बराबर खोलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं स्पष्टता उसका गुण होना चाहिए, जिसके दो अर्थ निकल जाएं वो अस्पष्टता गुण से भूषित है। जो पत्र लिखते हैं ना, तो हमने जब लेटर भी आजकल पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, पत्र लिखने की विधि भी पढ़ाई जाती थी, तो उसमें सबसे पहला गुण लिखा था कि पत्र का स्पष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो बात हम लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, उसकी समझ में स्पष्ट आ जाए, उसके दो अर्थ नहीं हों। क्या बराबर ये लिखें कि मैं 25 अगस्त गुरुवार फला मिति अष्टमी के दिन इतने बजे की गाड़ी से जयपुर, जो कोटा से चलती है, कोटा से चलकर जयपुर स्टेशन पर पहुंचूंगा, ऐसा क्लियर लिखो। क्या वो गुरुवार भी लिखो, उसमें मिति भी लिखो, उसमें तारीख भी डालो, ख्याल में आई ना, फिर दिन के लिखो, फिर कहां से चलकर, फिर कौन से स्टेशन पर कितने बजे, क्यों, तो मैं वहां पहुंचूंगा। अब ना मालूम अजमेर से आ रहे हैं कि कोटा से आ रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, वो भ्रम खड़ा हो जाएगा ना। मैंने उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रहना चाहिए कि जैसे वो पूछना पड़े भैया आप कहां से रहे हो, ये पूछना पड़े ये नहीं कि फला तारीख को मिति क्या है, कि मिति को दो अष्टमी हो गई है, पहली अष्टमी को आ रहा है कि दूसरी अष्टमी को आ रहा है, ये चक्कर नहीं पड़ जाए, मतलब स्पष्टता उसका गुण है। और काव्य का तीन तीन अर्थ निकलना गुण है और उसमें नहीं है गुण, तो न्याय में तो वो यही भाषा अपनी न्याय शास्त्र है ना, इसमें भाषा स्पष्ट होना चाहिए, ख्याल में नहीं ना। तो अपन ने इन्होंने सब वस्तु धर्मों में ये क्यों लिया, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे, क्योंकि ये पुद्गल में ही हो सकता आकर्षण हमारा, जितना आकर्षण है रुपया पैसा धन परिग्रह में है, और अथवा मीठे शब्द मिल जाए, उपाधियां मिल जाए, ऐसी ऐसी पदवियां मिल जाए, लोग मेरी प्रशंसा करें कि निंदा ना करें, इसलिए उन्होंने उसका वस्तु धर्मों का अर्थ ये कर दिया है ना। देखो आचार्य अमृतचंद लिखा था, आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में निकांक्षित अंग के संदर्भ में अन्य मतों की बात नहीं कही और पुण्य रूप धर्म की चर्चा नहीं की। उत्तर, आचार्य अमृतचंद ने पुरुषार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में निकांक्षित अंग के संदर्भ में अन्य मत संबंधी बात भी पाई जाती है। अब वही तो अमृत आत्मख्याति के लेखक हैं और वही पुरुषार्थ सिद्धि कह के लेखक हैं, तो कहते उनको भी ये बात इष्ट है, भले ही यहां नहीं लिखी हो और जैसे इन्हें लिखी हो, लेकिन उनको भी इष्ट है। क्या लिखा, इहि जनमनि विभो आदीन अमृत चक्रत्व केशवत्वादीन एकांत बाद दूषित पर समयान पी न कांक्षेत। क्या सम्य दृष्टि जीव इस भ्रम में बहिवादी की, परभ्रम में चक्रवर्ती व नारायण आदि पदों की और एकांतवाद से दूषित अन्य मतों की भी आकांक्षा न करें। तो ऐसा लिख दिया ना, वही बात तो जैसे इन्हें हो सकता वो यहां से पकड़ ली हो। अमृतचंद ने वहां नहीं लिखी, लेकिन अमृतचंद ने यहां तीनों बातें आ गई ना, इस जन्म का वैभव और अगले भव में चक्रवर्ती हो नारायण, क्योंकि जो आदमी इस जन्म में पैदा हो गया अब वो इसी जन्म में चक्रवर्ती और नारायण बन जाएगा, ऐसी कल्पना तो कोई नहीं करता है, तो अगले भव में मैं बन जाऊं, ख्याल में ना। और एकांतवाद से दूषित अन्य मतों की आकांक्षा न करें, तो ये प्रशासित उपाय में है, तो अमृतचंद की बात हो गई तो जयसेन ने यहां से पकड़ी। अपन की रिसर्च करो थावड़ा जी कि ये लाए कहां से हैं, जयसेन ने ऐसा अर्थ किया है तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि पहले कहीं आगम प्रमाण मिलता है, हैं? तो ये आगम प्रमाण उनके सामने मौजूद था, तो अब इससे मालूम पड़ता है वो कितनी गहराई से अध्ययन करते थे। अब अपन ने प्रसाद जी उपाय भी पढ़ ली, सबका चार्ट भी पढ़ लिया, क्षण वाला भी पढ़ लिया और समय सार भी पढ़ रहे हैं, और उसमें टीका अमृत इनकी भी पढ़ी और जैसे इनकी भी पढ़ी, समझे ना। अब इतनी पढ़ी अपन ने, लेकिन जब जो पढ़ी तब वो पढ़ ली बस खत्म। अब उनमें से आपस में मिलान नहीं किया जाए। अब छाला में क्या लिखा है देखो, इन्हीं अंगों के बारे में क्या है, अपन कौन से अंग पढ़ रहे हैं अभी, ये निकांक्षित क्या लिखा, जिनमत में शंका न धार, हाँ भव्य सुख बांछा भाने, संसार सुख की इच्छा नहीं करे। अब फिर रंगन सावतार में देखो, प्रसाद जी उपाय में देखो, इसमें देखो, जैसे इनकी टीका में देखो, हमें क्या करना, हम तो एक जगह देख लिया ना। अरे उतनी जगह देखने से आपके दिमाग में उसका पूरा स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा चारों एंगल से। मैं तो कहता हूं ये चार पांच जगह हैं, अपन 25 जगह भी देखने को मिले तो देखना चाहिए। बड़े दादा ने रंग साहब का तार लिखा ना, साहब का तार लिखा तो उसने कितने 42 श्राव का तारों को देखा, 42 उपलब्ध थे, यदि 50 उपलब्ध होते तो 50 देखते। अभी मूल गुणों के संबंध में तो बहुत झगड़ा है, दो आचार्य के एक से निकलते ही नहीं है। अब संबंध भद्र ने तो इतना ही कह दिया कि बस वो 5 उदम्बर फलों का त्याग और मध्यमास मधु का त्याग, और उसी का नाम 8 मूल गुण है। फिर किसी ने उसमें पानी छानना भी जोड़ दिया, फिर किसी ने उसमें जीव दया भी जोड़ दी, फिर किसी में उसने समय 5 अनुमृत भी जोड़ दी है ना। अब ये सारी चीजें हैं, हम सब देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे ना, हम तो एक तरह के अनुभव लेकर के वो बैठ गए। आचार्य तुलसी ने अनुवृत्त आंदोलन चलाया था, तो मैं सुना हूं, अब तो जब ठंडा पड़ गया है, पहले बहुत जोर उन्होंने उस पर डाला था गांव गांव में अनुवृत्त आंदोलन, और अनुवृत्त आंदोलन में उन्होंने ये वे पुरस्कार देते थे, 1 लाख का दिया, फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख तक का कर दिया था शायद, बहुत आकर्षण था लोगों को। तो मालूम उनने वो किसको दिया पुरस्कार, शंकर दयाल शर्मा को, वे राष्ट्रपति। अब उन्हें तो न 5 लाख का कोई महत्व था, है ना, और अब वो अनुवृत्त का पुरस्कार एक अजैनी गीत मिथ्या दृष्टि ले गया। अब उसी कर, अब उनकी तो राजनीतिक मतलब है, उनकी तो राजनीतिक जो व्यक्ति है उन्हें देना है, अपने अपने राजनीतिक गुल्लू सीधा करना है। तो वो जितने जितने उनने पुरस्कार दिए उनमें शायद एकाध जैनी हो, कि जैनी को 5 लाख देने की जरूरत ही क्या, वहां तो 11,000 में सब पूछ लाते हुए आ जाते हैं। साहू जी ने, दिगंबर जैन थे ना, अजैनों के लिए पुरस्कार रखा, वो तो पहले 1 लाख का था, 7 लाख तक का हो गया है ना। और फिर जब बहुत जैन पंडित चिल्लाए, कैलाशचंद जी वगैरह उनके संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको भी कहना चाहिए, तो मूर्ति देवी ग्रंथमाला से जैन पंडितों को भी 11,000 का पुरस्कार रख दिया। अब वो बढ़ते बढ़ते 51,000 का हो गया है। अब मैं पूछता हूं कि विद्वत्ता में क्या फर्क होता है, वो ये जैन दर्शन की विद्वत्ता का श्रेष्ठ है, और वो तो साहित्य में कोई कहानी लिखी, किसी ने उपन्यास लिखा है ना विधान, लेकिन ये फर्क किस बात का है, इसी बात का है कि इनके लिए तो इतना ही बहुत है, इतने में यहां साहू जी के चक्कर काटेंगे, उनकी प्रशंसा के लेख लिख देंगे, लेकिन उन लोगों को इससे इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो जो होते हैं ना उद्योगपति लोग, ये तो बाजार में जो चीज जितने में मिलती है उतने में खरीदते हैं, उन्हें खरीदना है, अब तुम्हारी कीमत कितने से लग जाएगी वो उस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो वो करते हैं, तो उसका क्या मतलब है ना। यहां की जो बात कहते हैं इस जन्म में वैभव और अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव, उन्होंने कह लिया क्यों, इस जन्म में तो चक्रवर्ती की कोई मांग करेगा नहीं, फिर तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मेरे पास बहुत करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं। तो लिखा ना इस जन्म में बहुवादीन, इस जन्म में वैभव और अमूत्र, अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव नारायण, और एकांत बात से दूषित पर समझा, इनकी इच्छा नहीं करे। तो इन प्रसाद जी उपाय में लिखा। अब रही बात पुण्य रूप धर्म की, सो यह तो विदित ही है कि धर्म के साथ कर्म फल की भी वांछा नहीं करने की बात उक्त गाथा में कही गई है, और कर्म फल में पुण्य पाप और पुण्य पाप के फल ही आ जाते हैं, इस कारण वस्तु धर्म में पुण्य रूप धर्म की बात कहना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। हाँ, तो सिद्धि उपाय में, क्योंकि वो कर्म फल में आ गया। आचार्य समंत भद्र रतंगन साबकाचार में सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं होने को निकांक्षित अंग कहते हैं। इस प्रकार पुण्य रूप धर्म के फल में देखो एक कंक्लूजन है, प्राप्त होने वाले संसारिक सुख, लौकिक वैभव, चक्रवर्ती आदि पदों की कामना न होना और अन्य मतों की श्रद्धा नहीं होना ही निकांक्षित अंग है। अब अपन ने दो लाइन की परिभाषा में वो जितनी परिभाषाएं हैं छेड़ाला से लेकर समय सार तक वो सब समय ली क्या। अब ये तो हिंदी में है, पंडित की लिखी है। देखो ऐसा हमने नहीं, आगे के जितने भी ग्रंथ हैं ना उनने यही तो किया है कि जो पहले पहले आचार्यों ने कही थी और उन सबको लेकर के एक एक सुंदर व्यवस्थित वो चीज बना दी। एक बात हिंदी संस्कृत साहित्य में आती है, नव सर्व गते माघे नव शब्दो न विद्यते, सुनी होगी कभी के नहीं, आज के संस्कृत साहित्य तो पढ़ा ही नहीं जाता ना। माघ कवि के नौ सर्ग पढ़ लो तो दुनिया में आपको नया शब्द नहीं मिलेगा। तो कितना कितनी बड़ी बात, अभी माघ सदी के नौ सर्ग पढ़ लो तो माघ के नौ सर्ग माने क्या, कि माघ कवि ने शिशुपाल वध नाम का नाटक लिखा है, ग्रंथ लिखा है, क्या नाम, शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य लिखा है। अब एक एक घटना है ना शिशुपाल का वध, समझ गए ना, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया, इतनी सी कहानी है, कहानी में कोई दम नहीं है, मतलब वो कहानी को पांच मिनट में आप सुना सकते हैं। अरे ये तो इतनी सी बात है, लेकिन एक और महाकाव्य है संस्कृत का जिसका नाम है किरातार्जुनीय, नाम सुना क्या नहीं, कोर्स में है तुम्हारे, देखो थोड़ी आवाज आ गई, ये क्या है किरातार्जुनीय, किरात माने भील और अर्जुन माने अर्जुन, तो वो भील की और अर्जुन की जो चर्चा हुई उस चर्चा का जिसमें वर्णन है उसका नाम है किरातार्जुनीय, समझ गए आपने। पर वो किरात नाम का जो भील है वो वास्तव में भील नहीं है, वो शंकर भगवान है और भील के भेष में आए हैं और अर्जुन से उन्होंने चर्चा की है। क्यों ऐसी चर्चा पड़ी उन्हें अर्जुन से करने की जरूरत, जो भील के भेष में आए। तो ये प्रसंग ऐसा है कि जब पांडव को 12 वर्ष या 14 वर्ष वनवास हुआ था ना, उनको अज्ञातवास था, वनवास नहीं अज्ञातवास, माने छुप कर रहो, हमें कहीं दिखना नहीं चाहिए तुम, तो देश बदल के छिप कर रहे थे। तो उस समय दुर्योधन ने इतना बढ़िया शासन प्रशासन दिया समाज को, उसका उद्देश्य था कि पांडवों को भूल जाएं, इतना बढ़िया राज्य दिया, ख्याल में आई ना, राज्य व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि वो कोई उसकी होड़ नहीं कर सकता था। उद्देश्य थोड़ा खोटा था, कैसा मैंने जनता की सेवा करना उद्देश्य नहीं था, ये था कि पांडव लोग को जो याद ही नहीं करें, क्योंकि ये राज्य उनका था, हमने ले लिया है, उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया है, तो 12 साल में हम इतना बढ़िया शासन करके बताएं, हरेक नागरिक को सुखी हो, हरेक नागरिक को समृद्धि मिले, टैक्स में एक्सम माफ, और हरेक को देना जो भी खजाना खाली कर दिया। अब सुनना, ये बहुत बड़ी विचित्र कहानी है जो आज की राजनीति में भी पूरी पूरी घटित होती है। कोई राजपाटी का राज जाता है ना, तो आते ही ये बांटता है, गरीबों को ये दिया, फलाने को ये दिया, क्यों कि मैं 5 साल तक इतना बढ़िया राज्य करूं कि दूसरी पार्टी को लोग भूल ही जाएं और मुझको ही वोट देवे, बस वोट देवे इस भावना से, ख्याल में ना, ऐसा उन्होंने राज्य किया। अब वो जो भील बन के आया था ना, उसने क्या किया कि उसने देखा कि इतना बढ़िया भार व्यवस्था है, अब तो पांडवों को भूल ही जाएंगे, इसलिए पांडवों को उकसाया और ये कहा कि देखो कौरवों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि अब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो अर्जुन को बहुत उत्तेजना हुई कि हम वो प्रतिज्ञा भंग कर दें कि हम 12 वर्ष तक गुप्त रहेंगे, तो वचनबद्ध थे ना वो, जुआ में जीत जात करके हुए थे, पर अपन अभी आक्रमण करेंगे क्योंकि पूरे 12 वर्ष हो गए, तब तक तो ये इतना बढ़िया राज्य करके जनता को खुश कर लेंगे कि जनता हमें जनता मार डालेगी हम कुछ बोलेंगे तो। तो वो जो किरात नाम का भील था, वो अर्जुन की राज्य की सुव्यवस्था, दुर्योधन की व्यवस्था, सुव्यवस्था को सुनाता है अर्जुन को कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो अर्जुन को एकदम आग बबूला होते हैं, द्रौपदी बहुत उत्तेजित हो जाती है, तुम लोग नपुंसक हो, तुम लड़ते नहीं हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो, तुमने ऐसा दिया मेरा ऐसा अपमान हुआ था, तो पूरा वो वर्णन की। तो राजनीति क्या है उसमें, ये अच्छा राज्य ये भी पांडवों को बर्दाश्त नहीं था, तो जनता को कोई तकलीफ नहीं हो ऐसी व्यवस्था दुर्योधन करे तो उस पर गुस्सा आना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी। बोलो तुम क्या चाहते थे, जनता सुखी रहे हमें ऐसा राज्य दें, तो उसने भी पैसे ही दिया है, तो एक खुशी की बात है ना। ऐसे ही कहते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये चाहती हैं कि जयपुर का विकास हो लेकिन मेरे द्वारा हो। यदि दूसरी पार्टी आ गई और उसने बहुत बढ़िया व्यवस्था की तो उसकी जो सामने वाली पार्टी है जो हमको कहती है हम तुम बहुत बढ़िया व्यवस्था देंगे, वो बहुत अंदर से खोलती है, उपद्रव करके उनको नष्ट तोड़ती फोड़ती है, उस अच्छी व्यवस्था को से वो प्रसन्न नहीं होती। ये राजनीति का गंदा खेल है, जनता इसमें पिसती है। मंदिर बन ना जाए ये कौन चाहता है, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी, सब कहें कांग्रेस चाहती है वो बनने नहीं दे रही, वो तो लड़ रही इसके लिए बनाने के लिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मंदिर बन गया बढ़िया तो ये मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो हमें वोट कौन देगा, इसको खड़ा रखो, बनने नहीं दो मंदिर, आप सोच नहीं सकते। दुनिया से कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम बना देंगे, समझे ना, लेकिन बन जाएगा तो फिर क्या जाएगा। वो सारी बातें उसमें लिखी हैं। अब आप समझ लो कि जब हुए हुए तब हुए होंगे अर्जुन और दुर्योधन तो, लेकिन ये लिखने वाला कभी भी सैकड़ों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष का भी हो सकता, मुझे उसका पक्का इतिहास मालूम नहीं है, कि उस वक्त भी उसके दिमाग में था कि राजनीतिक लोग कितने बदमाश होते हैं, और बदमाशों में किनके नाम है, पांडवों के और उन भगवान के जो भीड़ हालांकि उन्हें उकसा रहे थे, वे भगवान वहां उकसा रहे थे, महादेव जी श्री कृष्ण यहां उकसा रहे थे, लड़ो बेटा लड़ो, वे नहीं लड़ना चाहते तो गीता में हमने 18 अध्याय में लड़ने का उपदेश दे दिया। माने इन सबका स्वरूप क्या है, उनने वहां पर उसको व्यक्त कर दिया। हाँ भाई समझ आई ना, तीन महाकाव्य माने जाते हैं, कौन शिशुपाल वध, किरातार्जुनी और तीसरा कौन है, कालिदास के बाद है? कालिदास के नहीं गिनना इसमें, कालिदास के उपरांत जो बाद में महाकाव्य आए उनमें तीन महाकाव्य हैं, तीसरा कौन मैं कम सुनता हूं, तुमने सुन लिया शांति क्या बोल रहे जी? नजदी चरित्र नहीं नहीं है, निषद नहीं है, एक और है, अब आ जाएगा मुझे ध्यान। ये किमसा हुए, ये किमसा आए हैं, समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि पिछले में जो विशेषताएं आ गई उसमें जो कमी रह जाती है वो पिछले की विशेषताएं भी अपने महाकाव्य में डालते हैं और वो उन कमियों को भी दूर करते हैं। तो शिशुपाल वध सबसे बाद का है, तो मास कवि ने वो सब जो किरातार्जुनी में और एक और है उनमें जो कमी रह गई थी वो पूरी उसने पूरी कर दी, इसलिए उन्होंने लिखा कि अब कोई नया शब्द नहीं, अब कोई नई बात नहीं रही कि जो कोई महाकाव्य लिखेगा तो उसमें वो विशेषता डाल देगा। तो ये ऐसा ही नियम है कि जब मंथन कर करके अंत में जो लिखता है उसमें वो सब चीजें आ जाती हैं, ऐसा अपना नए चक्र है। तो अब 2000 वर्ष में नए जितने नए चक्र लिखे गए वो अपन अपने सामने वो भी है, तो समय सार भी है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नयों की चर्चा है वो भी है। तो सारी चर्चा को इकट्ठा करके और उसमें जो अंतर था उनके प्रश्न उत्तर लेके जमा के उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया ना, तो वो सारे एंगल आ गए ना, उन एक एक में वो सारे एंगल नहीं आए थे, आप समझिए ना, इसलिए वो सर्वांग हो जाता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उसके बाद भी कई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे, महावीर प्रसाद नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे और लोगों ने लिखे, तो जो अंत में लिखता है वो उसका एक परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सब चीजों को पकड़ के उसमें बातें आ जाती हैं। तो ऐसी ये है कि अपन ने इतनी चीजें पकड़ी और उन सबका सारांश ले लिया, उन सब में तो जो दूसरे में है वो बातें नहीं है ना, खुद अमृतचंदाचार्य ने जो प्रसाद उपाय में लिखा वो इस समय सार में नहीं है, और जो समय सार में लिखा वो प्रसाद उपाय में नहीं है, तो अपन ने इसमें दोनों को रख दिया और दोनों को दे दिया, तो आपके लिए तो ये सर्वांग हो गई ना पूरा, ऐसा है अर्थ। उस साहित्य की भाषा में तो सब समझते हैं साहित्य जगत में, लेकिन अब यहां कैसी बात करते हो तुम, एक सबके में नहीं आए तुम्हारे में आ गया है? तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है, एक कहने में भी और खुद ही कहना पड़े तो और ही दिक्कत है, दूसरे कला जब कह भी दे तो उनको भी डर लगता है, वे भी नहीं कह सकते हैं, समझिए ना। अब देखो अपन कहां पढ़ रहे थे ना, वो निकल गया। हाँ अब ये निर्मित चिकित्सांग पढ़ो, देखो जो न करे दुगुच्छम चेदा सब्बेश मेव धम्मानम
सम्मानिति मुनि दब्बो जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदा सिद्धि सब भावेशु सो खलु अमूण दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुणे दबो
जो
नहीं करते जुगो सा सब वस्तु धर्मो की प्रति वे आते माही मेरे जुगो सब सम की है जानना सर्व भावों के प्रति सद दृष्टि है असमूढ़ है अमूण दृष्टि समकिति वे आत्मा ही जानना।
कि जो आत्मा सब धर्मों के प्रति ज्ञानी नहीं करते हैं वे निर्विकित्सा अंग के धारी हैं। अब वो कर्म फल छूट गया, अब सब वस्तु धर्म कायम है, समझ गए ना, क्योंकि वो कांक्षा की बात थी ना, इसलिए वो कर्म फल भी ले लिया था। अब यहाँ कर्म फल की जरूरत नहीं है, अब सब वस्तु धर्म की बात चल रही है। अब वो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना कितना जरूरी है देखो, क्योंकि हम हर अंग में वो वस्तु धर्म को पकड़ रहे, मेरे चिकित्सा अंग में भी, अमूल दृष्टि अंग में भी, उपगुण अंग में भी, स्थितिकरण अंग में भी, तो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है ना। देखो अब अपने दोनों के अर्थ में देखेंगे गंभीरता से, तो जो चेतयता आत्मा ऊपर भी है, समस्त सभी धर्मों के प्रति, समस्त भावों के प्रति, वहां जुगुप्सा नहीं करते, यहां लिखा अमूण है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूण दृष्टि अंकाधारी सम्य दृष्टि जानना, उसको निर्विचिकित्सा अंकाधारी सम्य दृष्टि जान, एक सही बात है ना, अकेले नाम बदल दिए। तो इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है तो वो उन्होंने तो अलग अलग गाथाएं लिखी, तो वो अलग अलग रिपीट कर दिया बार बार। अब मैंने नया प्रयोग किया है, देखो इसमें इन दोनों को एक साथ अर्थ किया है, बबलू देखना क्या है। तो वो रिपीट दो दफे जो किया वो इसमें नहीं किया, क्या लिखा देखो, सम्यक दृष्टि जीव तंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति, अब इतनी बात दोनों में एक सी है ना, तो इसलिए एक ही दफे लिखी इसको, क्योंकि जुगुप्सा का अभाव होने से सभी धर्मों के प्रति, जुगुप्सा माने गिलानी का अभाव होने से निर्विचिकित्सा अंकाधारी है, और सर्व भावों में मोह का अभाव होने से अमूर दृष्टि अंकाधारी है, उस इतने वो बचा लिया, समझ गए ना, वो दोनों को एक दफे ही कहा और दोनों को एक साथ जोड़ दिया है ना, इसलिए उसे निश्चय से विचिकित्सा कृत और मूल दृष्टि कृत बंध नहीं होता, वहां पर दो दफे लिखते इसको, एक दफे लिखे विचिकास कृत बंध नहीं होता, दूसरी दफे लिखते मूल दृष्टि बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है, तो इसको भी एक दफे किया। अब आपको लिखाएगा वो तो मिल नहीं रहा संस्कृत से हिंदी, अब मिला सकूंगे तो मिलेगी, समझ नहीं आ रहा था कुछ कि वैसे ही हंस रहे हो, ख्याल में है ना, जो चीजें बिल्कुल रिपीट हो रही थी उनने दो बार नहीं लिखकर एक बार ही लिखा और दो अंगों को एक साथ निपटा दिया। मैं एक लिखने की तरकीब भी सिखा रहा हूं आपको, इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं, अर्थ बताने में तो ज्यादा इसमें दम नहीं है, सब में एक सही बात आ रही ना, पता के अंग का नाम बढ़ता है और उसका बंद नहीं होता और अपितु निर्जरा होती है, ये बात एक सी आ रही, तो इसमें तो विस्तार में क्या करूं, लेकिन उसमें एक स्टाइल जो है वो बात मैंने आपको बताई। ध्यान रहे उक्त दोनों गाथाओं की टीका बहुत कुछ समान होने के कारण पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोनों गाथाओं की टीकाओं का अर्थ एक साथ किया गया है, इसी प्रकार का प्रयोग आगे के अंगों में भी किया जाएगा। वो हमने जो किया है वो विधि भी इसमें लिख ली क्या किया है, अब हर एक की समझ में नहीं आएगा, जो इतनी गहराई से पढ़ेगा देखेगा आगे पीछे तो उसकी समझ में आएगा, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएगा, है ना। तात्पर्य वृत्ति में भी आत्मख्याति के समान ही इन गाथाओं का अर्थ किया गया है। यहां निर्विचिकित्सा अंग में सभी धर्मों में ग्लानि नहीं होने की एवं अमूर दृष्टि अंग में सभी भावों में मूर्ता नहीं होने की बात कही गई है। बदलाव तो सिर्फ इतना हुआ है, उसमें कहा सभी धर्मों में ग्लानि नहीं करें और इसमें कहा सभी धर्मों में मूर्ता नहीं हो, बस खत्म, और बाकी बातें सब एक सी हैं। उसी को रिपीट करके दो लाइन में दोनों अंगों का आ गया है। अब देखिए ये क्या करे कि सभी धर्मों में गिरानी नहीं करे। अब मैंने जो जैनेतर धर्म है अब उनमें गिरानी नहीं करेगा क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भई है बस जान ले, उनसे द्वेष करने से क्या फायदा है? गिरानी तो द्वेष रूप है ना, है? वो जो पर चीज है, जो गलत चीज है, वो हमने उसको गलत जान लिया, अब उससे राग द्वेष करने से क्या लाभ है? अगर हम धर्म के में आगे बढ़ रहे हैं ना, शायद सुबह के उसमें आया था प्रवचन में कि हम कहते द्वेष छोड़ो, झगड़ा है ना, तुम झगड़ा बंद करो, द्वेष छोड़ो, तो उसके बदले में हम राग करने की बात करते हैं। तो तुम्हारे क्लास में आया था क्या, है ना? राग हम कहते थे क्या फायदा होगा, द्वेष छोड़ के राग किया और राग छोड़ के द्वेष किया। तो जब भी ये मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जो बार बार ऐसी बातें कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई साहब, हम द्वेष छोड़ने के लिए तो निरंतर अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम जो चाहते हो कि द्वेष छोड़कर हम राग करें, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आ गया है। क्यों? हम किसी से झगड़े नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं करें, ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन फिर राग करें ये समझ में नहीं आती है, ख्याल में ही ना। लेकिन जगत तो यही समझता है, हम तो जब ही झगड़ा खत्म मानेंगे कि जब तुम गले मिल लोगे। क्यों? और पहले ही जैसे एक साथ बैठ के खाने लगोगे, पीने लगोगे, घूमने जाने लगोगे, क्यों? तब हम मानेंगे। है ना जगत का स्वरूप, जगत की समझ में असली बात आती ही नहीं कि हमको राग और द्वेष दोनों ही छोड़ना है। क्यों? जो मैं ये बात कहता हूं ना, तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आती है। किसी के प्रति नाम नहीं लेता मैं, तो वो कहते हैं देखो भाई, हम देश छोड़ने को तैयार हैं। हम बोलो इसके शब्द हम एक शब्द विरुद्ध बोलेंगे नहीं, एक कोई कार्य इसके विरुद्ध करेंगे नहीं, समझे ना। और क्या चाहते हो आप, बोलिए। लेकिन अब तुम कहोगे हम इसके साथ संबंध जोड़ेंगे, राग करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, ये संबंध नहीं है, है ना? दो आदमी पार्टनर थे और पार्टनर में एक ने बेईमानी करी और उन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होकर के वो किसी तरीके से न्यारे न्यारे हो गए, पंचों ने निपटा दिया, कुछ भी कर दिया, है ना? अब वो सामने वाला कहता है कि तुम्हारा झगड़ा निपट गया है, तो अब बस प्रेम से द्वारा पार्टनरशिप कर लो। वो कहता है कि मेरा झगड़ा निपट गया है, मैं इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये अपना कमाए खाए, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा। क्यों? अब मैं इसके साथ राग करने को तैयार नहीं हूं, क्यों? मैंने देश जान लिया है। तो कहते वो देश ही रहा, नहीं इसका नाम देश, देश छोड़ना इसका नाम नहीं है, समझे ना। राग करना देश छोड़ करके ये तो बिल्कुल गलत है, समझे ना। हमको देश छोड़ करके भी वितरागता करनी है और राग छोड़ करके भी वितरागता करनी है। देखो ऐसा होता है ना कि एक आदमी अपनी सारी संपत्ति उस नालायक से नालायक बेटे को, जो शब्द विष्णु में पारंगत है, समझे, धर्म की रंजमात रुचि नहीं है, उनको दे जाना चाहता है। पर इसके लिए किसी एक का उदाहरण देने के लिए नहीं है, हिमा वहां से क्या ले गए, कहां से, हिमाचल से कन्याकुमारी तक हर एक जगह तुम जाके खोज के देख लो। क्यों? मैंने वो उदाहरण दिया ना कि वो अपनी पड़ोसी के बेटा जैसा वो चाहता है कि मेरा बेटा हो वैसा ही है। क्यों? बिल्कुल योग्य है, पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, धर्म के प्रति रुचि है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, अपने बेटे में सब दुर्गुण है। लेकिन उसके लिए वो पुरानी फटी पुरानी किताबें देने की इच्छा होती है, अपने बेटे की उदाहरण के कपड़े देने की इच्छा होती है, उसे एक जोड़ी नए कपड़े और नई किताबें खरीदवाने का भाव नहीं आता है, और अपने नालायक बेटे को सर्वस्व दे जाने का भाव होता कि नहीं होता है। और फिर उसी बेटे को उसमें कितने दुर्गुण थे तो अभी सब कुछ दे जाने की इच्छा थी ना, और किसी बात पर टकराव हो जाए और झगड़ा हो जाए और राग देश में बदल जाए तो क्या कहता है, एक नया पैसा नहीं दूं, सब मंदिर को दे जाऊंगा। तो मंदिर को वह लपेटता है उस राग देश में, क्यों उसे क्या होता, उस लड़के को मंदिर से देश हो जाता है, ये मंदिर नहीं होता तो मुझे मिल जाता क्या तो क्या मैं थोड़ा मन स्मारक को दे जाऊंगा, स्मारक को देश हो जाए। ऐसा ऐसा यहां देखते हैं वो मिलने नहीं देते हैं, वो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, और वो बीमार पड़ जाएं, हम उसकी तबीयत देखने जाएं, तो उनके बच्चे हमें उनसे मिलने नहीं देते हैं। हम तो किसी से आज तक अपील करी नहीं है, उस वक्त भी उन्हें प्रतिज्ञा दिलाते हम भैया कुछ नहीं मांगने वाले हैं, नहीं नहीं तुम तो नहीं मांगोगे लेकिन वो दे देगा, तो तीन नाम मेरे मुंह पे आ रहे यही 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 कि जयपुर की, लेकिन मैं मुंह पे लाऊंगा नहीं, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन जिनको हमसे हमें उनको इतनी हमारी नजदीकी थी लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया, जबकि हम किसी से पैसा मांगते नहीं आज तक, क्यों कि अंतिम मरते समय जो कुछ कह गया कि 10 लाख दे देना पंडित जी को तो फिर मुझे 10 लाख देना ही पड़ेंगे, तो वो मुंह से 10 नहीं, हाँ बाबू जी चिंता नहीं करो चिंता नहीं करो 10 रुपया दे दूंगा वो लाख निकलने ही देगा, इतना दूर से हो हल्ला कर देगा कि निकलेगा भी तो सुनाई नहीं देगा, समझ में आई। तीन नाम मेरे अभी जबान पे आ रहे हैं क्या और ये तीन नहीं है, 30 अरब लोग ऐसे हैं, आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा ही है सबके सब, और देश हो जाए तो मैं नहीं दूंगा एक पैसा ऐसे। अमेरिका में तो इतना होता है कि कुत्ते बिल्ली के नाम अरबों की जायदाद कर जाते हैं, अब देख कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे, उनके नाम ट्रस्ट बनाए जाते हैं, अब वो ट्रस्ट भी बनाए जाएंगे जिनको, अब एक कुत्ते बिल्ली को कितना खिलाएंगे उसकी क्या करेंगे, 2-4 साल जिएगा, छोटी उम्र होती है उसकी, मर जाएगा फिर उस पैसे का क्या होगा, या वो ट्रस्टी लोग जो भी जहां जो होगा मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट में चला जाएगा, वो जैसा बता रहे हैं वो तो कुत्ते बिल्लियों के लिए ट्रस्ट बना देते हैं, तो और कुत्ते बिल्लियों पर खर्च करते हैं, करते होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो देश का स्वरूप कितना है, देखो राग का स्वरूप भी विचित्र हो, देश का वैराग्य नहीं होता है, वैराग होगा तो क्या करेगा बेटा वो बताओ, वैराग हो जाएगा तो क्या करेगा, अरे जो होना होगा होगा, छोड़ो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी को नहीं देना ना किसी को लेना ना किसी से राग करना, इसे छोड़ के ना इसे करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट अरे जो लेगा डाकू ले जाएंगे, गवर्नमेंट ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे, जब मुझे जो छोड़ना है तो छोड़ना है, वो तो 2 घंटे बाद तो छूट ही जाएगा ना, महावीर प्रसाद जी छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, अब 2 घंटे पहले तुम छोड़ दो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो तुम्हारा परिग्रह का त्याग का फल तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं तो छूटना तो है ही, मतलब तुम किसी को कुछ नहीं कर जाओगे तो वो तो जो होगा गवर्नमेंट में जाएगा, चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, उचक्के ले जाएंगे, पड़ोसी ले जाएंगे, तो मुझे क्या, तो चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती तो छोड़ा क्यों, और वो गर्भवती के लिए ऐसा राज तिलक करके चले गए तो उनने सोचा था कि क्या हो जाएगा, तो ये आज के लोग कहेंगे महामूरख थे मूरख, तो सही व्यवस्था तो करके जानी थी, क्यों क्या सही व्यवस्था करते, किसी योग्य आदमी को देके जाते जिससे वो सारे को इकट्ठा रखता है। इसमें देश का भी तो नुकसान हो जाएगा ना शांति जी। लेकिन मैं बताऊं कि आज पुराणों में देख के बताना कोई चक्रवर्ती ऐसा हुआ है कि जिसका बेटा चक्रवर्ती हुआ हो? अच्छे से अच्छे बेटे एक घंटे उस संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं रख पाते हैं। वे राज तिलक करके चले गए ना, कौन? भरत चक्रवर्ती अर्क कीर्ति को दे गए ना पूरी, तो एक घंटे तो बचा लेंगे कि नहीं? क्यों खैरा जी, क्या होता है? ये 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो उनके अंदर में थे, उनके मृत्यु का समाचार सुनते ही आजाद हो जाते हैं और सारा देश 32,000 टुकड़ों में बट जाता। समझ में आया ना आपकी? ये दुर्दशा होती है हरेक चक्रवर्ती के बाद। तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता और तीर्थंकर का बाप तीर्थंकर नहीं होता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता और चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती तो किसी को बाप से नहीं मिलता, बाप दादों की संपत्ति नहीं है और वो बाप दादे बेटों को नहीं दे जा सकते। समझ गए ना? ये स्वयं उपार्जित है और वो स्वयं ही के साथ में समाप्त हो जाती है। किसी को राज तिलक कर जाए, चाहे किसी के पेट पे कर जाए और चाहे वो बड़े बहुत बलवान राजा के अपने बेटे को कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।